अगर टैक्स को साथ रखें ना, तो पता चल रहा है कि जब लोग आपकी तलब और तड़प की कदर नहीं करते, तो आप तड़पते भी हैं, तरसते भी हैं, लेकिन अल्लाह तसल्लियां देता है कि ऐसे लोग जो अपना रास्ता ना बदलें, उनका हाल क्या होगा। आयत 35, मसलुल जन्नतिल्लती वुईदल मुत्तकून, मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा किया गया मुत्तकियों से। क्या? तजरी मिन तहतिहल अनहार, इसके दामन में नदियां बहती होंगी। सोचिए जरा, सी व्यू अपार्टमेंट, बीच व्यू, पाम, क्या क्या लोगों ने बना दिया। हमेशा लोगों को अच्छा लगता है कि पानी के पास घर हो। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे घरों के नीचे से नहरें बहती होंगी। और वो ईदा मजहूल है। मजहूल क्या होता है इंग्लिश में? पैसिव वॉइस है। इट विल हैपन, वादे दिए हैं मुत्तकियों को। और मुत्तकी कौन होते हैं? आप अपने से पूछे, तकवार है। रमजान आपको मुत्तकी बनाएगा। एक सीडी पता नहीं कहाँ है वो, अभी आपके पास इधर है कि नहीं, रमजान और तकवा। कल भी एक जगह हमने सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, डेनमार्क में या स्वीडन में कहीं लेक्चर था, तो तकवा की डिक्शनरी की तारीफें हैं कितनी सारी, कि सुन के वाकई हाथ ठंडे होते हैं कि हमारे हाथ में किधर तकवा है। तजरी मिन तहतिहल अनहार उकुलुहा दाइमुन व जिल्लुहा, इसके दामन में नदियां बहती होंगी, इसके फल भी हमेशा कायम रहने वाले होंगे और साए भी। तिल्का उकबल्लज़ीना तक़ौ, ये है इंजाम इन लोगों का जिन्होंने तकवा की रविश अख्तियार की। व उकबल काफरीन अन्नार, और काफिरों का इंजाम तो आग है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, कौन से काफिर हैं? अब आप सोच में पड़ जाएंगे, ये डिसबिलीवर है, नॉन मुस्लिम है, कौन है? तो अल्लाह से पूछ लीजिए। अगली आयत में जवाब है, वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और जिन लोगों को हमने किताब दी और वो खुश भी हो रहे हैं इस किताब के साथ। यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैक, यानी ए नबी, कुछ लोग वो हैं जिनको आप ये किताब दी और इस किताब के साथ वो खुशियां भी हैं। ये कौन लोग हैं? मदीना के वो नेक लोग जिनको कुरान की खबरें मिलती थी। कहाँ से? कि मक्का में एक शख्स है, ये खुशखबरी उन लोगों की। अभी अल्लाह के नबी मदीना नहीं आए, मक्की सूरत है। इस आयत को हाईलाइट करके लिख ले, ये मदीना की उन सईद रूहों की बात है कि अभी अल्लाह का नबी वहां नहीं पहुंचा, कुरान नहीं पहुंचा उनके पास, इसके बावजूद वो खुश हो रहे थे कि अल्लाह ने एक नबी का जहूर किया और मक्का से उनके आने लिए अच्छी अच्छी खबरों को वो देख रहे थे। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैक, ये मदीना के उन अहले किताब का तذکرہ है जो बहुत नेक सीरत थे। इनको भी खबरें मिल रही थी कि मक्का में आखिरी नबी आ गया, तो ये उनकी खबरें सुन के खुश होते थे। लेकिन बात बदबخت व मिन अल अहज़ाब मन युनकिरु बादहू, और बास गिरोहों में कुछ ऐसे भी हैं जो इसके बास हिस्सों का इनकार करते हैं। पूरे का इनकार नहीं करते थे। किस हिस्से का इनकार करते थे लोग? जो उनके आमाल पे जर डालता था, जो उनके रस्म व रिवाज पे चोट डालता था। तो इन सब को आप क्या कह दें? कुल इन्नमा उमिरतु अन अबुदल्लाह वला उशरिक बिही, आप कह दीजिए मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और इसके साथ शरीक ना करूं। इलैही अदू व इलैही माब, इसी की तरफ मैं बुला रहा हूं और इसी की तरफ मेरा लौटना है। क्या पता चल रहा है इन आयतों को पढ़ते हुए कि लोग माने के ना माने, आप अपना काम करते जाएं, पीयर प्रेशर का शिकार ना हो, चलते जाए। इलैही अदू, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे, हु केयर्स, मैं तुम्हें उधर ही बुला रहा हूँ। आयत 37, वकज़ालिका अन्ज़लनाहु हुक्मन अरबियन, और इसी तरह हमने इसको उतारा है अरबी में, कौले फैसल बनाकर, हुक्म देने वाली किताब बनाकर। यहाँ लफ्ज़ देखिएगा, हुक्मन लफ्ज़ ज़रा काबिल गौर है, हुक्म बमानी फैसला, यानी ये कुरान क्या है? कौले फसल। सूरत तारक में हम देखेंगे आयत 13 और 14 में, इन्नहु लकौलुन फसल वमा हुवा बिल हज़ल, ये कलाम हक को बातिल से जुदा करने वाला कलाम है। कोई बेहुदा बात नहीं है, यानी ये खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम चूंकि हर वक्त इसको ले रहे होते हैं ना, लेकिन हम अपने आप को देखें कि ये खेल नहीं है, वीकेंड पे किसी को ट्रेनिंग दे रही थी, उन्होंने दौरे कुरान कराना है। तो जब मैंने उनको थोड़ी सी बातें बताई ये, तो पसीने छूटे और कहने लगी इतना मुश्किल काम है दौरे कुरान कराना। तो मैंने यही आयत उनके सामने रखी थी, वमा हुआ बिलहज़ल, ये खेल थोड़ी है। अल्लाह अकबर, एक इंसान की कहीं भी बात आप दूसरे को बताएं तो 10 गलतियां लग जाती हैं, टोन ही बदलने लगती है। आप नोट करते हैं, तर्जमा पढ़ते हुए टोन से भी मफहूम बदल जाता है। और अक्सर मैं अब कोशिश कर रही हूँ इस साल के टोन से आपको उसका मफहूम समझाऊं, ताकि बात आसानी से समझ आए सीधा सीधा पढ़ने से। तो हकीकत है, ये कुरान कोई खेल नहीं है, ये कौले फसल है, ये फैसले करने सिखाती है, ये हुक्मन अरबियन है। फिर आगे बात, अगर लोगों को नहीं अच्छा लगता, वलैन तबअतहुम बादमा जाअका मिनल इल्मी, और ए नबी, अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी शुरू कर दी इसके बाद कि आपके पास सही इल्म आ चुका। ये सिर्फ नबी को कहा जा रहा है ना, मुझे और आपको तो नहीं कहा जा रहा है ना, हमें भी कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट आ गया है, कौले फसल आ गई है, तुम्हें जिंदगी में डिसीजन लेने सिखा रही है। अब अगर इसके बाद आप उनकी ख्वाहिशों की तरफ झुकेंगे तो गौर से सुन लो, मालक मिन अल्लाह मिन वली वला वाक, फिर आपकी तरफ से ना तो कोई हिमायती है और ना कोई बचाने वाला। सोच के दुनिया वालों की तरफ जाना, जब तुम दुनिया वालों को खुश करने के लिए मुझे पीछे डालते हो तो उस पकड़ में फिर तुम्हें उनमें से कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और रह गई बात के नबी थे, आप कहते हैं क्या करें, इस क्लास में बैठ के तो दिल करता है सब कुछ करें, बाहर निकलते हैं तो फिर दुनिया ही और है। आता है ना सवाल, और हकीकत है कि यहाँ बैठ के हर फैसला आसान, जो मर्जी जिंदगी नाम लिखवा दो अल्लाह के, लिखने को तैयार, सारी जायदाद लगवा दो, लगाने को तैयार है ना, कि ये बात। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, अब उसका जवाब अगली आयत में देख ले, आयत 38, वलकद अरसलना रसूलन मिन कब्लिक, और हमने भेजा रसूलों को आपसे पहले भी, यानी आपसे पहले भी रसूल आए, वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्या, और हमने बनाई उनकी बीवियां भी और औलाद भी। ये तो नहीं होता कि इस किताब के साथ लग के बीवियों को छोड़ दो, शोहरों को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, सिवाय हजरत ईसा के, बाकी सारे नबियों पर आयत फिट आती है। उन्होंने निकाह भी किए, इनकी औलादें भी हुई, शायद आपको पता है कि नहीं, लेकिन हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, वापिस आके करेंगे अभी जब दोबारा आएंगे, मौका मिल सके। अलामत क़यामत का आज जो कोर्स है उसका 2nd लास्ट है, कल ख़त्म हो रहा है वो कोर्स, तो हजरत ईसा पे आजकल हम बात कर भी रहे हैं। तो हजरत ईसा बाद में आएंगे तो शादी करेंगे। यहां से ये पता चलता है कि कोई रसूल भी राहिब नहीं था और अय्यम नहीं था। ये भी एक लोगों ने तसव्वुर दिया कि दीन का काम करना है ना तो बस फिर शौहर बीवी खत्म, नहीं, बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब जरूरियात उनके साथ थी। और अगर मैं और आप इस कुरान की आड़ में अपने घर वालों को पीछे डाल देते हैं सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से, तो याद रखिए हम इस आयत का इनकार करते हैं। आप सब अपने बारे में लिखिए जरा, हर एक, मैं अपने इस दीन को अपने घर वालों के सामने किस अंदाज से पेश करती हूँ। देखिए, मैं आपको सिर्फ बात समझाने और नसीहत की खातिर इस पर थोड़ी सी बात करूँगी, हालांकि वक्त इजाज़त नहीं देता। अगर ये क्लास आपकी 24/7, समझते हैं, हफ्ते के 7ों दिन 24 घंटे की हो, आपको इसी के साथ ही बांधा जा रहा है, तो आप सब अपने इस ख्याल में सच्चे हैं कि हमें बच्चों, घर, शौहर के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है, घंटे कितने होते हैं एक वीक के, 24 को 7 से देंगे तो कितने बने, 168। अब इसको 4 से ज़रब दें, 672 आवर्स बनते हैं एक महीने के। आपकी ये क्लास के आवर्स कितने हैं, जो सिर्फ आपके यानी इधर के काउंट है, बाकी को बाद में मिला लें, 4.5 आवर्स है ना, 4.5 को आप दे दिए 4 से ज़रब तो कितने बने, 22 घंटे, तो 22 को 4 से ज़रब दे दें पर कैलेंडर मंथ जिसको आप कहते हैं, उसमें 1.5 थोड़ा और भी यूज़ कर ले, कितने घंटे हैं टोटल आपके एक महीने के क्लास के। ये मैथ का हिसाब है, कोई आखिरत का हिसाब नहीं है जी, 88 आवर्स टोटल कितने थे? 672 माइनस करें 670, अपने नोट्स पे लिखे हैं ये सारी कहानी, मैं ऐसे थोड़ी अब उलझा रही हूँ। 672 आवर्स में से 88 निकाल दें आपके हिसाब के मुताबिक। 564 आवर्स स्टिल आपके पास है ज़रूरियतन वाजवादन के लिए। फिर अगर किसी का शौहर ये कहे कि जी इनको तो अब घर का फुर्सत नहीं और होश नहीं और ये तो बच्चों को नहीं देखती, तो ये आप इल्ज़ाम दिलवा रहे हैं खुद इस किताब को और किताब वालों को। पूछे खुद से, चलिए आज आप पूछ के आए अपने घर वालों से, क्या इस कोर्स के बाद मेरा आपको तवज्जो देना या घर को देखना पहले ही जैसा, पहले से बेहतर हुआ है या खराब हो गया? तो फिर आप खुद देखें कि आपकी क्या गवाहियां आती हैं। ये अब आपको मैंने सिर्फ सोचने का अंदाज दिया है। कभी कुरान का नाम लेकर रुसवा ना करें इसको। ये तो ऐसे ही जैसे एक लड़की शादी के बाद अपने महके वालों के नाम पे बड़ी सेंसिटिव हो जाती है कि मेरे घर वालों का ना कुछ कहना, क्योंकि मैं इधर से आ गई और मेरा आपके साथ ताल्लुक है। हम इस किताब को अच्छी बातें भी सुनवा सकते हैं और हम इस किताब को बुरी बातें भी सुनवा सकते हैं। आप देखिए 24 घंटे में से 4.5 घंटे आसान हिसाब है, स्टिल आपके मेरे पास पीछे 19.5 घंटे होते हैं। छोटे लेवल पे ले आइए तो वक्त ख़त्म नहीं होता। लेकिन बहरहाल यह कि अल्लाह ने यहाँ ये बात बताकर कि नबी जो थे वो कोई ऐसी दुनिया से कटे हुए लोग नहीं थे, और अल्लाह के नबी के तो 9 घर थे एक वक्त में। कैन यू इमेजिन, इतना मसरूफ शख्स जिसने 5 वक्त की नमाज भी जमात से पढ़ानी है क्योंकि वो इमाम मस्जिद है, और जिसने फैसले भी करने हैं क्योंकि हाकिम है, और बीवियों के घर में एक चक्कर रोज लगाते थे चाहे रहना किसी दूसरी जगह पे होता था, लेकिन सबका हाल चाल पूछ के आते थे, कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे। हमसे एक घर ही ना मैनेज हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। बहरहाल उनके मौजज़ों का जो मुतालबा था उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, वमा कान अली रसूलिन, और किसी रसूल के लिए ये मुमकिन ही नहीं है, यात ये भी आयत निल्ला भी इस निल्ला, कि वो कोई निशानी यानी मौजज़ा ले आता मगर अल्लाह के हुक्म से। लिकुल लिया जलिन किताब, हर शय के लिए एक मुकर्रर वक्त है। कैसे? अब ये आयत गौर से सुनने की है, इसका अगली आयत से ताल्लुक है, उसको साथ पढ़ेंगे। क्या करता है अल्लाह इस किताब में? यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम रखता है, क्योंकि वाइंदहु उम्मुल किताब, और इसी के पास है उम्मुल किताब। ये दो आयतें थोड़ी सी मुफस्सरीन की निगाहों में इसके ऊपर बात ज़्यादा हुई, और वो क्या है, अगर इसकी आप सिंपल सी मीनिंग ले लें यानी इसका आम मिसाल ले लीजिए, तो इस आयत से मुराद क्या है कि नबी कोई भी मौजज़ा अपनी मर्जी से नहीं लाते, और लिकुल्ली अजलिन किताब, हर शय का एक मुकर्रर वक्त है। इससे मुराद है कौमों को धमकी, तुम नबियों से मौजज़े मांगते हो, अगर तुम्हारी मोहलत का एक ख़ास वक्त ना होता तो तुम्हें कब का अल्लाह ने पकड़ लिया होता, ये मुराद है, समझ गए? यानी नबियों के ये मौजज़े अपनी ज़ात और अपनी हस्ती से भरे हुए मुतालबे हैं। अल्लाह ने तुम्हें जो इस मुतालबे के बावजूद जीने की मोहलत दी हुई है ना, सिर्फ इसलिए कि अजल किताब लिखी हुई एक मुद्दत है, वरना तुम्हें अल्लाह ने पकड़ के पटख देना था कि तुम इतने खुदसर हो गए हो कि नबी से इतने बड़े बड़े मुतालबे करते हो। ये तो है इसका एक साफ और आम मफहूम, ठीक है। दूसरा इसका मफहूम, अजल और किताब का मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत का ताल्लुक तकदीर से है। सूरत के इंट्रो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस सूरत के अंदर हम तकदीर पे भी बात करेंगे, तो फिर इस आयत का मफहूम थोड़ा सा बदल जाएगा, और वो कैसे होगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त रखा हुआ है, एक उसका फैसला होता है, उसके बाद फिर उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। तो थोड़ी सी तकदीर पे बात कर लेते हैं इस एंगल को समझने के लिए कि किस तरह अल्लाह के पास है। तो बस अपने आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है, तकदीर की हकीकत, आप सुनना चाहें तो उसे अपनी डिटेल्स लें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मैंने अभी बात शुरू करनी है ना तो आपके जहनों में सवाल उभरने शुरू हो जाएंगे, तो फिर यहाँ तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, चंद जुमले जो हर साल बोलती हूँ वो आपके सामने भी बोलूँगी, तकदीर हुक्म इलाही नहीं, इल्म इलाही है, ठीक है। कैसे? तकदीर अल्लाह का हुक्म नहीं कि ये करो ये हो, बल्कि अल्लाह का इल्म है, प्री नॉलेज है, प्री टेस्ट नहीं कहते ना इसको, दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने सारी कायनात की तकदीर लिख दी। इवन मेरी आपकी नहीं, सूरज चांद सितारों जानदार बेजान सब की लिख दी, कहाँ जलजला आना है, कहाँ आतिशबाजी फटना है। ठीक है, फिर अगली बात यह कि अल्लाह ने जब ये सब लिखा ना, तो उसकी ओरिजिनल कापी अपने पास रख ली, समझ लीजिए। ठीक है, वो कभी नहीं बदलती, उसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक, हैंगिंग डेस्टिनी। लेकिन उसकी कुछ कॉपीज फरिश्तों को दे दी, जिनके जरिए काम करवाने थे दुनिया में। ठीक है, जो तकदीर की कॉपियां फरिश्तों के पास है ना, वो चेंजेबल है, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऊपर अल्लाह के पास है वो अनचेंजेबल है। कैसे, मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, आप उसकी पहली कॉपी क्या होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है। फिर आप जब दूसरों को देते हैं, कहते हैं कि ये मैंने आपको दे दिया, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, अब होता क्या है, मिसाल दूंगी कि अल्लाह ताला ने एक शख्स की उम्र लिखी 100 साल, ये 100 साल जिएगा, अल्लाह के फैसले में ये उम्र इतनी थी। फरिश्तों को जब वो कॉपी मिलती है ना, अब वो बंदा गुनाह करता, कुछ गुनाह उससे हो गए, और हदीस में आता है कि गुनाहों से रिस्क में और उम्र में कमी हो जाती है, नेकियों से उम्र में इजाफा होता है, ये भी एक अल्लाह की सुन्नत है। अब होगा क्या कि उस शख्स की असल उम्र लिखी थी 100 साल, उसने कुछ गुनाह किए, तो उसकी उम्र कितनी हो गई, 90 साल, 10 साल उसके उसके गुनाह खा गए। ठीक है, अब फरिश्तों को पता है कि इस बंदे को 90 साल की उम्र में पकड़ लेना हमने, लेकिन उस बंदे को अल्लाह गुनाहों से माफी की तौफीक दे देता है। फरिश्तों को पता है कि 90 साल की उम्र में इसकी जान लेनी है, लेकिन वो बंदा ना सिर्फ ये कि तौबा करता है, बल्कि उसके बाद नेकियां करता है, समझ रहे हैं, कुछ दुआ करता है उसके हक में। तीसरी चीज ये भी लिख लें, यानी नेकी, बदी और दुआ, ये 3 कोड वर्ड रख लें, नेकियां, गुनाह और दुआ, ये 3 कलम हैं जो तकदीर को बदल देते हैं। बहुत डिटेल है इसमें, आप बाद में सुन लीजिएगा इस लेक्चर को अगर आप चाहें। हमारे गुनाह हमारी जिंदगी में कमी कर देते हैं, बरकतें छीन लेते हैं, नेकियां हमारी खैर करती हैं, सिला रहमी उम्र में बरकत डालती है। ठीक है, अब क्या होता है कि असल कॉपी अल्लाह के पास है, वो नहीं कभी बदलेगी। दुनिया में ये सारे मामले फरिश्तों को भी नहीं पता होते, वो कहते हैं कि पहले तो अल्लाह ने कहा था इसकी उम्र 90 साल हो, अब इस बंदे के लिए किसी ने दुआ की कि अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, इसको लंबी उम्र दे, अल्लाह कहते हैं अच्छा इसकी दुआ के बदले में इसके 10 साल बढ़ा दो। फरिश्ते चेंज क्या कर रहे हैं कि असल उम्र इसकी 90 थी, लेकिन इसकी दुआ की वजह से 10 साल बढ़ के 100 हो गए, मौत उसको 100 पे ही आनी है, अब ये 100 जाके ऊपर अल्लाह के लिखे हुए मिलाएं तो वो बिल्कुल सेम है। इतनी बात समझ आ गई है, ये हम ऐसे नहीं छोड़े हुए खुले। आज भी आप देखिए कि बाजार, आप कहते हैं हमें तो कोई पुलिसमैन ही नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर कैमरे देख रहे हैं ना, आपको टिकट आ जाता है ना घरों में, तो तकदीर अल्लाह का इल्म है, उसको पता था हम कल क्या करेंगे, हमारे साथ कल क्या मामला होना है। ये कैसी है, जैसे एक उस्ताद अपने स्टूडेंट के मेलान को देख लेता है, इंक्लाइनेशन को देखता है कि इसकी तवज्जो कोई नहीं है क्लास में, वो कहता है आप फेल हो जाएंगी, आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगी कल जिंदगी में, और हो सकता है आप अपने किसी गलत अमल की वजह से कल जेल में पहुंच जाए। और ये सारी बातें लिखकर उस्ताद अपने स्टूडेंट को दे दे एक पर्ची कि कल जिंदगी में अगर किसी मुश्किल में आ जाओ ना, तो इसको खोल के पढ़ना, और वो इसमें यही बातें लिख दे। अब वो बच्चा वाकई गलत काम करे, गलत गैंग के शिकार हो जाए, और किसी चोरी गबन के केस में वो जेल में पहुंच जाए, उस दिन उसको उस्ताद की बात याद आए कि मेरे उस्ताद ने कहा था कि किसी मुश्किल में पढ़ो तो इस खत को खोल के पढ़ लेना। अच्छा, वो खोल के देखा, उसमें ये सब लिखा कि ये शख्स बिल्कुल नॉन सीरियस है और एक दिन ये जेल में पहुंच जाएगा। वो फौरन जेलर को बुलाए, जेलर जी ये देखो मेरी बजाय मेरे उस्ताद को जेल में डालो, क्योंकि उसने आज से 10 साल पहले लिख दिया था कि मैं जेल में आऊँगा। तो क्या जेलर मान जाएगा? ये उन लोगों की मिसाल जो गलत काम करके कहते हैं अल्लाह का हुक्म होता तो हम ना करते। हम हर चीज़ अपने शौक से करते हैं। एक उस्ताद जब इसको प्रिडिक्ट कर देता है कि ये बच्चा मेहनत करके बड़ा बनेगा, ये अच्छा होगा, आप अपने बच्चों के बारे में करते रहते हैं, ये मेरी बच्ची बहुत अच्छा घर संभालेगी, ये मेरा बच्चा बड़ा समझदार है, तो ये तो मेरा और आपका थोड़ा सा इल्म है ना, कई दफा हमारी उम्मीदों से बिल्कुल हालात उलट होते हैं। लेकिन अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि इस कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह को पता था कि आज इस वक्त हम इस क्लासरूम में बैठे होंगे और फलां फलां गैर हाजिर होगा और फलां आके भी फोकस नहीं करेगा और फलां बड़े ज़ौक और शौक से सुनेगा। अल्लाह को उस दिन भी ऐसे ही पता था जैसे इस वक्त हमें पता चल रहा है। अल्लाह का इल्म है। अगर तकदीर हुक्म होता ना, फिर हम कह सकते थे हम बंधे हुए हैं। तकदीर का बंधा नहीं, दो चीज़ें, एक है तकदीर, एक है तदबीर। तकदीर अल्लाह की तरफ से है, तदबीर हमारी तरफ से। तकदीर और तदबीर मिलती हैं तो काम होता है। जैसे आप मैचेस की डिब्बियां पे दोनों तरफ मसाला लगा होता है ना, तो उनको रगड़ते हैं ना तो फिर आग लगती है। अल्लाह कुछ चाहे और हम नहीं चाह रहे, किस मौजू पे आज बात हो रही है? हिदायत। अल्लाह चाहते हिदायत दे, कुरान में आता है अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत का फैसला किया, लेकिन लोग खुद नहीं फैसला कर रहे तो वो काम नहीं हो रहा। अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग गुनाह करें, लेकिन लोग अपने शौक से करते हैं तो वो पलट जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहता है कि कुछ को मैं रखता हूँ, कुछ को मैं मिटा देता हूँ। इसके बारे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दुआ भी आती है जो वो तकदीर के मामले में मांगा करते थे। उर्दू में बोलती हूँ क्योंकि अरबी में तो आप साथ साथ नहीं लिख सकते, लेकिन बाद में दोहरा दूंगी इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो। वो कहते थे कि अल्लाह अगर तूने हमें खुशकिस्मत लिखा है तो इस लिखे को साबित रख, और अल्लाह अगर तूने हमें बदबخت लिखा है तो इसको मिटा दे और हमें खुशबخت लिख ले, क्योंकि तेरे पास इल्मुल किताब है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह की फुल अथॉरिटी, कोई राइटर किताब लिखे तो क्या उसमें चेंजेस नहीं कर सकता? अल्लाह के पास पूरी अथॉरिटी मौजूद है, मैं और आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कायनात में कुछ चीज़ें हमें बाहर और तरह दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ और हालात होते हैं। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारी उम्र बढ़े तो हमें नेकियां करनी चाहिए, गुनाहों से रुकना चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए। हदीस में आता है कि कोई चीज़ तकदीर को नहीं फेरती सिवाय दुआ के। अल्लाह ताला दुआ के ज़रिए से फैसला जो किया होता है उसको चेंज करा देता है। बज़ाहर फरिश्तों को और हमें लग रहा होता है कि चेंज है, लेकिन अल्लाह के लिखे के मुताबिक वो बिल्कुल एक ही होता है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारे भी तकदीर के बुरे लिखों को मिटा दे और अच्छे लिखों को कर दे। और आप कहते हैं कि हर साल जब लैलतुल कदर होती है, ताक रातों में से कोई एक रात, बाज़ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे उसको 15 शाबान से रिलेट करते हैं, हालांकि सूरह दोहान की इब्तदाई आयतें और सूरह कदर दोनों एक ही रात के बारे में, जिसको हम सब लैलतुल कदर कहते हैं, उस रात फैसले होते हैं। आप इस साल इंशाल्लाह रमज़ान चूँकि करीब है अभी, तो आप जब लैलतुल कदर को आपको मौका मिले तो खूब रो रो के ये दुआ मांगे कि अल्लाह ये अगले साल में जो कुछ तूने मेरे हक में खैर लिखी है उसको साबित कर दे, और अगर कोई बुरी बात लिखी है तो उसको मिटा दे। हजरत मुजाहिद से पूछा कि हम में से किसी का ये दुआ करना कैसा है कि इलाही अगर मेरा नाम नेकों में है तो बाकी रख, और अगर बदों में है तो इसको हटा दे और नेकों में कर दे। आपने फरमाया ये तो अच्छी दुआ है। साल भर के बाद फिर मुलाकात हुई या कुछ और अरसा गुजर गया तो फिर इनसे यही बात दोबारा पूछी गई, तो आपने नाज़लना खुफी लैलत मुबारका, सूरह दुहान की इब्तदाई आयात से दुआयतों की तिलावत की, फिर फरमाया लैलतुल कदर में साल भर की रोजियां यानी जो खैर मिलनी है और तकलीफें मुकर्रर हो जाती हैं, फिर जो अल्लाह चाहे उसको मुकद्दम और मौखर करता है, लेकिन सआदत और शिकावत की किताब नहीं बदलती। हजरत उमर की जो दुआ है ये खाना काबा का तवाफ मांगते हुए ये करा करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझ पर बुराई और गुनाह लिख रखे हैं तो इनको मिटा दे, तो जिसे चाहता है मिटाता है और बाकी रखता है, क्योंकि उम्मुल किताब तेरे पास है। बहरहाल इस मौजू पर इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने अच्छे कामों को बढ़ाने और बुरे कामों से रोकने वाला बना दें। अब बिल्कुल सूरत का अख्तिताम है। अल्लाह ताला एक ऐसी बात की खबर देते हैं कि जो साइंस से भी मुतल्लिक है और उसका वही से भी ताल्लुक है। कैसे? आयत नंबर 40 देखिएगा, वइन नुरीयन्नक बाद अल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ्फयन्नक, और ख्वाह हम दिखा दें आपको इसका कुछ हिस्सा जिसकी धमकी हम इनको दे रहे हैं, अजाब लिख लीजिए इसके नीचे, या फिर हम आपको वफात दे दें, फइन्नमा अलैकल बलाग, बस आपके जिम्मे तो उस पहुंचाना है, वअलैनल हिसाब, और हिसाब लेना हमारे जिम्मे। पूरी सूरत में नबी सल्लम को मक्का वालों ने जो सताया उसका तस्करा था। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अजाब तो इन पे आना है, इसका वादा तो हमने आपसे कर दिया, या तो आपकी जिंदगी में इनकी पकड़ आ जाएगी या आपके बाद आएगी, ये हो के रहेगा, बस आप बात पहुंचा दें और उसके बाद इनका हिसाब लेना देना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या आप नहीं देखते? क्या आयत 41, अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या ये लोग देखते नहीं कि हम जमीन को घटाते चले आ रहे हैं इसके किनारों से, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, और अल्लाह ही फैसला करता है, कोई नहीं पीछे डालने वाला इसके हुक्म को, वहुवा सरीउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत में बहुत सारी मुख्तलिफ तफसीरें मिलती हैं। सिंपल तारीफ क्या है कि ये मक्का वाले आपको सता रहे हैं, इनका ख्याल क्या था कि आपका पैगाम ख़त्म हो जाएगा और लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कुफर कम होता जा रहा है, इस्लाम फैल रहा है। नबी सल्लम के दौर में जो चेंजेस आ रही थी उसमें ये बहुत बड़ी चेंज लोगों ने भी फील की कि दिन ब दिन आपकी दावत जोर पकड़ती जा रही है। पहले 2, 4, 6, 10 थे, होते हुए इतने बढ़ गए। कैसे लोगों को आप देख सकते हैं कि मुंह छुपाना पड़ रहा था जो कि दूसरी तरफ थे, ठीक है? तो एक तफसीर इसकी ये है कि कुफर कम हो रहा है, इस्लाम का गलबा आ रहा है, ठीक है? बस ने इसको साइंस से रिलेट किया। आज अगर आप ज़मीन को थोड़ा सा देखें ज्योग्राफी की नज़र से, तो आज ज़मीन खुश्क हो रही है, यानी जमीन के अंदर आप कहें कि ठंडी हो रही है ना दिन ब दिन, तो फासले कम हो रहे हैं, ये भी एक मुराद है, ठीक है? एक तीसरी भी इसकी तफसीर है जिसको एक लफ्ज में आप समझ जाएंगे, ग्लोबल विलेज, फासले कम हो रहे हैं। पहले जिन जगहों पे महीनों में लोग पहुंचते थे, वहां फिर दिनों में, और दिनों के बाद घंटों में, और आप देखिए वहां मिनटों में पहुंचते हैं। पूरी दुनिया एक विलेज बन गई, आप एक टेक्स्ट करते हैं पूरी दुनिया में खबर हो जाती है। पहले चले टेलीफोन था, टेलीकॉम था, तार लोग भेजते थे, कबूतर तो पता नहीं कभी भेजते थे कि नहीं, लेकिन सुना हुआ कि पहले कबूतर के पास भी मैसेज था। अच्छा, उस दौर के कबूतर भी इंटेलिजेंट होंगे, आज भेज के देखिए वो भी कोई गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि अब वो भी कुछ साइंटिफिकली हो गए हैं। तो एक इसकी तफसीर ये भी है कि फासले सिमट रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए हम सबको इससे क्या बताया गया, हमारे लिए अमल की बात क्या है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना फैसला नाफिज करके रहना है, तुम इसमें अपना हिस्सा डाल लो, तुम्हारी वजह से भी इंशाल्लाह कुफर शर्क बेदत बेदीनी बेहयाई सिमटेंगी, तुम अपने साथ रहो, और तकदीर का नाम लेकर काम ना छोड़ो। जो लोग तासुब की वजह से फिर नहीं मानते उनको उनके हाल पे छोड़ दो, और उनके लिए भी दुआ करो और अल्लाह के रास्ते में निकलते रहो, यही बात होगी। ये बात सूरत अंबिया में आएगी, आयत 44 में भी, अफला यरौना मिन अतराफिहा, क्या ये लोग नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते आ रहे हैं, तो क्या यही गालिब आने ले? तो यही मफहूम इंशाल्लाह वहां भी जाएगा। और बहुत कुछ इस पे हुआ मक्का से मदीना जाने में, अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो आखिरी अंजाम किसका हुआ, आयत 42, बस अब लास्ट आयतें सूरत की, वक़द मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और जिनसे पहले तो उन्होंने भी बड़ी चालें चली थी, हर दौर के मुनकरीने हक नबियों और रसूलों की दावत हक के लिए साजिशें करते थे, जाल बुनते थे, लेकिन क्या हुआ, फ़लिल्लाहिल मकरु जमीयन, लेकिन सारी की सारी तदबीरें अल्लाह ही के इख्तियार में, यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, वो जानता है हर जान जो कुछ कमाती है, बस यालमुल कुफ्फारु लिमन उक्बद्दार, और अन करीब मालूम हो जाएगा इन काफिरों को कि आखरत के घर की कामयाबी किसके लिए है। धमकी है, इतने साल से सब्र किया जा रहा था, अब इनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी पकड़ होने वाली है, इस्लाम फैल रहा है, और तुम सब अपने गुनाहों की सजा भुगतोगे, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام تھا، اس کا تذکرہ آیت کی آخری آیت میں، کیا؟ آیت 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلَا، آپ اللہ کے رسول کوئی نہیں، نعوذ باللہ، آپ مرسل نہیں ہیں، کچھ نہیں آتا آپ کو، ایسے ہی خود ہی بڑے بن گئے، ایسے ہی آپ آ کے ہمارے باپ دادا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا. کہا اچھا، قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم. پہلے آپ سوچیے کہ اگر آپ کو کوئی الزام لگائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا. اب ظاہر ہے ہمیں کوئی مرسل تو کہتا نہیں، نہ ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے اس کی بات کرتا ہے، کوئی آپ کو کہہ دے تمہیں کچھ نہیں آتا، تم حافظ نہیں ہے، تم عالم نہیں ہے، تم بالکل نہیں اللہ سے ڈرتی، تمہارے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے، تو ہم آگے سے کیا کہیں؟ ایک لمبی ڈکشنری کی لسٹ کھول دیں، ہر لفظ جو بھی اس کے خلاف بول سکے بولیں. لیکن دیکھیے اللہ سکھا رہا ہے اپوزیشن کو کیسے فیس کرو، تنقید اور کرٹیسزم کے اوپر کیسے دیکھو. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، دیٹس اٹ، میں تو کچھ نہیں کہتا. یہ جملہ کون بولتا ہے؟ جس کو اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہوتا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہیں. یہ کون ہے؟ دیکھیے میری حالت کو اللہ جانتا ہے یا علم الکتاب والے جانتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو من سے مراد ہیں، بعض کہتے کہ من سے مراد اللہ ہے کیونکہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، بس کہتے ہیں کہ من سے مراد یہاں اہل کتاب ہے، تورات اور انجیل تھی جن کے پاس، کہ ان کے پاس بھی تذکرے موجود ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ من سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن یا جبرائیل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل مراد ہے. ساری باتوں کو صحیح کر دیں، خلاصہ کیا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے. اللہ تو جانتا ہی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، میرا تو ڈائریکٹ معاملہ اس کے ساتھ ہے. یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سورہ بقرہ آیت 142 اور سورت الانعام 20 میں ہم نے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اللہ کے نبی کو رسول کی حیثیت سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری دنیا بھی سورج کا انکار کر دے تو سورج سورج ہی رہتا ہے، نبی ہدایت کا سورج ہوتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی سمر جاتی ہے، اور اگر اس طرح کے بے ڈھنگے قسم کے الزامات لگاتے ہیں نبی کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو جس راستے پہ لگایا لگاتا ہے، نہ کامیابی ملے کوئی بات نہیں، انجام اچھا ہوا. تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں یہی بات ہے. سبق شروع ہوا تھا استجاب للہ پہ، اللہ کی دعوت کو لبائی کیا ان کا حال تھا، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلے گا یا آنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ضرور توفیق دے گا. اور آپ دیکھیے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے دین کا کام نہیں چھوڑا. ہمیں ذرا سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے دین کا کام چھوڑتے ہیں، باقی کاموں کی تو دوسری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرما دے.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب